नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इसमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में NCR के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और नियमित कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।